पृष्ठ संख्या 57। इसके विपरीत प्राचीन जापान में बौद्ध धर्म के रूप में एक अत्यंत विकसित धर्म विद्यमान था। यह धर्म जापान में अपने साथ साथ दर्शन, कला एवं संगठन की ऐसी पूर्ण संपदा लाया था जो इसने भारत, मध्य एशिया और चीन में अपने विकास के दौरान प्राप्त की थी। इसका अपना सुसंपादित दर्शन है जिसमें उपदेश दिया गया है कि यह संसार क्षणभंगुर है, मिथ्या है। मनुष्य इस मिथ्या संसार और इसमें होने वाले दुखों से पुनर्जन्मों की अनंत श्रृंखला द्वारा आबद्ध है। उसके प्रत्येक जन्म का निर्धारण उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। कर्म शब्द की परिभाषा संक्षेप में इस प्रकार दी गई है। यह पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का समाहार है। मनुष्य का उद्देश्य इस परिवर्तनशील संसार के बंधन और पुनर्जन्मों की श्रृंखला से धर्म में बताए उपायों का अनुसरण करके मुक्ति प्राप्त करना है। प्रत्येक मत में मुक्ति प्राप्त करने के भिन्न भिन्न उपाय बताए गए हैं। बौद्ध धर्म का अपना विशाल साहित्य था। यह जिस जिस प्रदेश से भी गुजरा वहाँ अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ जिन्हें उस प्रदेश की उत्कृष्ट कला एवं सहज सौंदर्य से तथा पीढ़ियों से श्रद्धालु भक्तों द्वारा दिए गए उपहारों से सुशोभित किया गया। इसका अविवाहित पौरोहित्य एवं शक्तिशाली संगठन के रूप में अपनी विद्वता, निष्ठा तथा योग्यता के लिए प्रख्यात था। बौद्ध धर्म ऐसा प्रधान साधन था जिसके माध्यम से सभ्यता ने जापान में प्रवेश किया और इसे वहाँ के राजाओं, अभिजात वर्गीय लोगों तथा सरदार सामंतों का पीढ़ी दर पीढ़ी समर्थन प्राप्त होता रहा। बौद्ध धर्म का जापान में वही स्थान था जो मध्ययुगीन यूरोप में कैथोलिक मत का था। दोनों ही धर्म अर्ध सभ्य देशों में उनसे उत्कृष्ट एवं पुरातन सभ्यता को लाने के साधन बने। दोनों ने अपने दर्शन, ज्ञान और पौरोहित्य तथा अपने सुप्रतिष्ठापित कर्मकांड, कला एवं वास्तुकला के द्वारा वहाँ के समाज को अभिभूत किया। तोकुगावा शासन की समाप्ति के आसपास बौद्ध धर्म का प्रभाव वहाँ के विद्वत समुदाय पर छिन्न होने लगा था। जनता की निष्ठा अभी तक इसी में बनी हुई थी, लेकिन शिक्षित वर्ग का झुकाव कन्फ्यूशी मत के महान दार्शनिकों की शिक्षाओं की ओर हो गया था। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि धर्म के मामले में लोगों में तीव्र मतभेद हो गया था। जापान के लोग जहाँ अपने कुछ कार्यों के अनुष्ठान के लिए शिंतो चैत्य में जाते थे और कुछ अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बौद्ध मंदिरों में जाते थे, वहाँ साथ ही वे अपने पूर्वजों की समाधि पर जाकर सम्मान प्रदर्शित करते थे तथा बिना किसी विरोध भाव के उसी प्रकार चीनी विचारकों की नैतिक शिक्षाओं का भी अनुसरण करते थे। चाहे बौद्ध धर्म पर से उनकी आस्था हट गई हो, परंतु फिर भी अपने सगे संबंधियों को दफनाते समय वे बौद्ध धर्म के ही संस्कारों का आश्रय लेते थे। जापान के जीवन एवं चिंतन के क्षेत्र में कन्फ्यूशियसी धर्म एक निर्णायक तत्व सिद्ध हुआ। चीनी संस्कृति के जापान में पहले पहल प्रविष्ट होते ही चीनी शरण्य साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन शुरू हो गया था, लेकिन तोकुगावा शासनकाल तक इन पाठकों की संख्या अत्यंत सीमित थी। ईयासु के समय ही से ही कन्फ्यूशियस को आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा और सैनिक वर्ग में चीनी साहित्य तथा चीनी संत अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। तोकुगावा शासन के मध्य तथा उत्तर काल में हुए पुनर्जागरण के पश्चात भी जब अपने आदिम धर्म, भाषा, साहित्य तथा स्थापनाओं की ओर जापान के अनेक विद्वानों का ध्यान एक बार फिर केंद्रित हुआ, तो उस काल में भी अधिकांश समुराइयों में नीतिशास्त्र काफी लोकप्रिय था। कन्फ्यूशी मत ने जापान को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। पूर्वजों की पूजा का विशेष रूप से प्रचलन हुआ। छोटे सरदारों की सामंतों के प्रति निष्ठा, बच्चों द्वारा पूर्णतः माता पिता की आज्ञा का पालन तथा पत्नी का पति की अधीनता को इस हद स्वीकार करना कि वह अपने व्यक्तित्व का लोप कर दे आदि भावनाओं को प्रोत्साहित किया गया। आज भी वहाँ के विद्यालयों में जिन सैनिक शिक्षाओं का उपदेश किया जाता है वे स्वरूप में मूलतः कन्फ्यूशी हैं। जापान के सैनिक वर्ग की नीति संहिता बुशिदो यूरोप के सामंत युगीन सामंत व्यवस्था की याद दिलाती है। इसका सृजन वर्षों के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका आरंभ काल कम से कम तभी से माना जा सकता है जब से सैनिक वर्ग का संगठन हुआ। ईयासु के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में इसका विस्तार और परिशोधन हुआ और इसके कुछ अप्रिय तत्वों का परिमार्जन कर दिया गया। यह मूलतः जापानी था, लेकिन इसके बाद के विस्तृत रूप पर कन्फ्यूशी एवं बौद्ध धर्म का इनमें भी विशेषतः कन्फ्यूशी मत का प्रभाव दिखाई देता है। राजभक्ति व व्यापारी बुशीदो का प्रधान गुण था। स्वामी भक्ति के लिए आवश्यकता पड़ने पर समुराई को अपने जीवन सत्य तथा परिवार तक को बलिदान करने के लिए तत्पर रहना पड़ता था। सामंत प्रथा के समाप्त होने पर पहले जो निष्ठा दाइमियो सामंत प्रथा के समाप्त होने पर पहले जो निष्ठा दाइमियो को प्राप्त थी, वह अब राष्ट्र अर्थात सम्राट को प्राप्त हो गई। इसमें अपने माता पिता एवं पूर्वजों की सेवा एवं भक्ति को विशेष महत्व दिया गया था। यद्यपि इसका स्थान राजभक्ति के बाद ही आता था, इस निष्ठा तथा एक भाई के दूसरे भाई के प्रति कर्तव्यों पर विशेष बल देने के कारण परिवार में आश्चर्यजनक एकता स्थापित हो गई। मितवयिता जीवन में सादगी तथा धन संपत्ति के प्रति अस्पृहा को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। मन बहलाव के साधन के रूप में सैनिक आमोद प्रमोद को प्रोत्साहित किया गया था, जीविकोपार्जन के धंधों तथा धन के प्रति मोह को आदर्श की दृष्टि से देखा जाता था। योद्धा कष्ट के समय भी आत्मनियंत्रण को सर्वोपरि समझते थे और बिना विचलित हुए तीव्र वेदना को भी सहने का अभ्यास करते थे। आत्मसम्मान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था और समुराई की खड़ग, जो उसकी पदवी की सूचक थी तथा जिसका प्रयोग कभी भी बिना किसी आवश्यक प्रयोजन के नहीं किया जाता था, अपने तथा अपने स्वामी के तनिक से अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उद्यत रहती थी। आत्मसम्मान को जीवन से भी अधिक महत्व दिया जाता था और अनेक अवसरों पर आत्महनन उचित ही नहीं अपितु एकमात्र मार्ग समझा जाता था। अपमान और पराजय का प्रायश्चित आत्महत्या द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार दाइमियो की मृत्यु पर उसके वफादार अनुयायी अपने दुख एवं स्नेह की अभिव्यक्ति इसी प्रकार करते थे। वीर योद्धा अत्याचार के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए आत्महत्या का आश्रय लेते थे और सामंतों के अविवेकपूर्ण अनुचित कार्यों का विरोध करने के लिए भी वे इसी साधन का प्रयोग करते थे। प्रत्येक समुराई को प्रशिक्षण का कुछ भाग हाराकिरी अर्थात आते निकाल कर आत्महत्या करने की क्रिया की जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत करना पड़ता था। यह आत्महत्या का एक सर्वसामान्य तरीका था तथा चारित्रिक दृढ़ता की सर्वोपरि परीक्षा इस बात से होती थी कि अवसर आने पर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक और बिना विचलित हुए हाराकिरी कर सकता है या नहीं। यदि कभी किसी को प्राणदंड दिया जाता हो, वह अपने सरदार के हाथों मारे जाने का अपमान सहने की अपेक्षा आत्महत्या द्वारा अपने प्राण आप लेना अधिक उचित समझता था। जैन मत ने इच्छाओं के दमन तथा जीवन के भौतिक साधनों के प्रति उपेक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। कठोर अनुशासन पर बल दिया गया तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया गया। आगे चलकर कन्फ्यूशी मत ने इसमें कुछ परिवर्तन किए। समुराई की पत्नी भी बुशीदो के प्रभाव से मुक्त न थी। उसके लिए आत्मविलोपनशील होना आवश्यक था और आशा की जाती थी कि वह अपने दुखों और कष्टों को प्रकट न होने दे। उसे इस बात की शिक्षा दी जाती थी कि अवसर आने पर वह कैसे अपना जीवन बलिदान कर सकती है। अपने आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत कर वह अपने पति को प्रभावित करती थी। लेकिन फिर भी बुशीदो के अनुयायी होने का दावा करने वाले सभी लोग बुशीदो का पालन नहीं करते थे। समुराई स्वयं भी अपने आदर्शों तक नहीं पहुंच पाते थे। सामंतवादी व्यवस्था के समान ही बुशीदो ने न केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्रभावित किया, जिनके लिए मुख्य रूप से इसकी व्यवस्था हुई थी, अपितु जनसाधारण को भी इसने प्रभावित किया। समाज के निम्न वर्ग के लोगों ने योद्धाओं के आचार व्यवहार के समान यथासंभव उनके नैतिक नियमों का भी अनुकरण किया। जिस समय समाज व्यवस्था ने बुशीदो का सृजन किया था, उसके समाप्त होने के चिरकाल पश्चात तक भी बुशीदो सामंती व्यवस्था के समान ही सक्रिय शक्ति बना रहा। प्राचीन जापान के संगठन एवं जीवन प्रणाली की ये प्रमुख विशेषताएं थी। आगे चलकर इनमें अनेक परिवर्तन हुए और इनमें से कुछ तो बाद में विलुप्त हो गई, लेकिन इसमें जरा भी संदेह नहीं कि जापान के आदर्शों व संस्कृति पर इनकी अमिट छाप पड़ी है।